संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में। संवर अधिकार पर चर्चा करनी है, समय सार परमागम की। इसका ये मंगलाचरण लिखा है अपन ने, अपना अपन शुद्धात्म में अपने में ही लीन, ना ही संवर कहा जनवर परम प्रवीण। नीचे की पंक्ति में तो कुछ नहीं है, जिन्हें भगवान ने कहा है जो बहुत होशियार हैं, परम प्रवीण हैं। संवर कहा है काय को, अपना अपन शुद्धात्म में, अपने आत्मा में अपनापन होना माने समय दर्शन, और अपने में ही लीन होना माने अपने में ही लीन हो जाना माने सम्यक चारित्र, समय दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इनकी उत्पत्ति का नाम ही संवर है। वास्तव में श्रद्धा गुण का प्रणमन है जिसका नाम समय दर्शन है, उसको बहुत गलत अर्थ में समझा जाता रहा है। श्रद्धा का लोग इसमें जो प्रयोग होता है ना, कि आपको जितनी श्रद्धा है उतना दे दो, मतलब श्रद्धा माने भावना, ऐसा अर्थ करते श्रद्धा का अर्थ भावना है नहीं। और शुद्ध परम पूज्य पिताजी, तो पिताजी में कैसी श्रद्धा है। वास्तव में श्रद्धा गुण तो पर से संबंध ही नहीं रखता, ये अपनेपन की भाषा शास्त्रों में ज्यादातर है नहीं और विद्वानों में ही प्रयोग में नहीं आती है। किसी भी चीज में ये मैं हूं ऐसा एकत्व ममत्व होना, उसका नाम वास्तव में श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो अपन इसको बिल्कुल आज की छोट भाषा में कहें तो हम इसे अपनापन ही कहेंगे। तो श्रद्धा गुण की पर्याय तो अपनापन है। जब वो अपने आत्मा में अपनापन करती है तो सम्मय दर्शन होता है, और जब वो पर पदार्थों में अपनापन करती है तो मिथ्या दर्शन होता है। इतनी सी बात है बस। तो लेकिन वो करती है अपनापन, तो ध्यान देना, चाहे निज में करे चाहे पर में करे, उसका काम सिर्फ अपनापन स्थापित करना है। अनादिकाल से इस आत्मा ने पर में ही अपनापन स्थापित किया, माने श्रद्धा गुण ने पर में ही अपनापन स्थापित किया। क्यों? क्योंकि जो वो है वो आत्मा, वो उसके जानने में ही नहीं आया। जो 18वीं गाथा में आता है 17वीं 18वीं में, कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाज गोपाल सभी के नित्य अनुभव में आ रहा है, वैसा तो आ रहा है इसके, लेकिन उसमें इसने अपनापन नहीं स्थापित किया। उसे ये नहीं लगा कि ये मैं हूं। टोडरमल जी ने इसे जरा स्थूल तरीके से सिद्ध किया है। समय सार के मोक्ष महा प्रकाशक के 76 पेज पर देखेंगे तो वहां शायद मिलेगा। वहां एक प्रश्न किया है कि भाई पर में अपनापन स्थापित करने का नाम है जी सम्यक दर्शन है, मिथ्या दर्शन है, तो एक केंद्रीय ने ऐसा किसमें अपनापन स्थापित किया। उसने देह में एकत्व बुद्धि क्यों की, वो तो कुछ जानते ही नहीं है। तो उन्होंने चार पंक्तियां लिखी हैं कि आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है और उसका काम है किसी में ये मैं हूं ऐसी प्रतीति करना ही करना, उसके बिना वो रह नहीं सकता है। माने वो श्रद्धा गुण प्रति समय अपना काम करेगा तो वो किसी ना किसी में अपनापन स्थापित करेगा। तो उसने देह में अपनापन स्थापित क्यों कर लिया अनादिकाल से? तो पंडित जी ने जवाब दे दिया कि उसका ज्ञान देह ही बनी, ज्ञान का गे एक वहां से देह बनी, क्योंकि वो ही अत्यंत नजदीक का पर पदार्थ है। एक क्षेत्रावगाह है ना, और जो जानने में आता उसी में अपनापन स्थापित करता है, तो उसने उसमें अपनापन स्थापित कर लिया। तीसरी जो बात है, जो उसे एक इंद्री है उसके, तो एक इंद्री से स्पर्श के उसके माध्यम से उसे शरीर जानने में आया स्पर्श के, तो उसने उसमें अपनापन स्थापित कर लिया। ये अनादि की योग्यता है जो अपनापन स्थापित करने की, और वर्तमान के संयोग इन दोनों को मिलाकर यदि हम विचार करें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे मैं ये कहता हूं कि एक गाय ने अभी अभी बछड़ा दिया, बच्चा पैदा हुआ उसके, अब वो बच्चा बहुत भूखा है, क्योंकि अभी तो उसके मां के नाल जुड़ी थी तो उसे खुराक उससे मिल जाती थी, अब वो उससे बाहर हट गया, कट गया, तो उसे खुराक मिलना बंद कर दी, हो गई, तो अब उसे भूख लगती है, और उसकी एक ही वासना है कि मुझे कुछ खाने को मिले, खाने को मिले, खाने को मिले। अब उसे ऐसा विवेक तो है नहीं क्या खाए क्या नहीं खाए, और ऐसा एक दिन का एक घंटे का पैदा हुआ बच्चा अनाम सनाम कुछ भी खा ले तो बीमार हुए बिना मरे बिना रहेगा नहीं। अभी मुंह में दांत नहीं है, पेटों की आंतें भी इतनी समर्थ नहीं है, क्योंकि अभी तो मां के उससे सीधा डायरेक्ट उसको शरीर में पोषण मिल जाता था, वो पचाने मचाने का काम मां निपटा लेती थी जो करना पड़ता है अपन को, और बाकी जो उसका एसेंस है वो बच्चे को डायरेक्ट मिल जाता था। अब वो समझते हैं। अब एक तो देखिए कि ये वर्तमान की परिस्थिति है, और एक जो अपन बोलते त्रिकाली जो भगवान आत्मा है ना, एक ऐसा उसमें ज्ञान संस्कार जन्म से ही मौजूद है कि जी मेरे को जो खाने की चीज है वो यहीं कहीं आसपास उपलब्ध है। अब बोलो ये किसने बताया उसे, वो खोजने लगता है ना। अब वो जानता है इस तरह का जो जानवर है जैसी उसकी मां है, इसी तरह के जानवर में ही उसका वो खाना यहीं पास में मौजूद है, और ये भी जानता है कि उसके सारे शरीर के अन्य अंगों में नहीं, लेकिन जो दूध के स्थान स्तन हैं उनमें ही वो दूध है, और वो बिल्कुल एंटीबायोटिक सुरक्षित है, उसके खाने से कोई खतरा नहीं है, किसी ने बताया नहीं है उसे। कहते मां के दूध में बहुत ताकत होती है, शुरू में मां का दूध दिला दिया जाए तत्काल का तो उसमें जीवन भर तक वो काम करता है, लोग तेरी मां ने दूध पिलाया हो तो अरे बोलते वो सुरक्षा का साधन उसमें होता है। अब ये हम बाहर से नहीं सिखाया किसी ने, लेकिन वो मां के पेट से ये बात सीख के आया है कि यहीं आस पास मेरे खाने का पक्का इंतजाम है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन प्रयत्न करके उसे प्राप्त तो करना ही पड़ेगा। तो वो एक घंटे का बच्चा भी अपने मां के स्तनों की खोज शुरू करता है, तो एक प्रॉब्लम है उसकी जो आप लोगों को निपटानी है। क्या है कि उसने आज तक अपनी मां की शक्ल नहीं देखी है, उनके पेट में रहा लेकिन उसकी शक्ल नहीं देखी ना, इसलिए वो मां को वास्तव में बाहर से पहचानता नहीं है, और वहां जहां मां गाय ने बछड़ा दिया वहां 8-10 गायें और झुंड में खड़ी थी, छाया होती है ना, पानी का इंतजाम होता है तो वहां पर आराम करने के लिए सब खड़ी हो जाती हैं। तो ये तो मालूम है कि ऐसा कोई प्राणी है जिसमें मेरा भोजन सुरक्षित है, लेकिन वो इनमें से कौन है ये निक्की करना कितना कठिन काम है, क्योंकि ये पूछ नहीं सकता, कोई बताने वाला नहीं है। तो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि वो किसी दूसरी गाय के पास जाता है तो वो उसे मारने को दौड़ती है, मतलब एकदम अपनी अरुचि व्यक्त कर देती है, उसको पास में भटकने नहीं देती है। और उसकी जो माँ है वो बराबर उसके आसपास सुरक्षा के लिए खड़ी रहती है। उसको एक तकलीफ और है, और वो क्या है कि जब माँ के पेट से आया तो उसके शरीर में एक जाला लिपटा था, जिसे जरायु बोलते हैं ना अपन। वो क्यों होती है मालूम? यदि वो ऐसा लिपटा नहीं रहे और अंदर हाथ पैर चलाए तो माँ का उदर पट सकता है, आंतें डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो माँ के पेट की सुरक्षा के लिए वो एक जाला होता है। कहते हैं कि जो शेर होते हैं शार्दूल, आजकल के शेर तो गधे जैसे हैं, इनमें तो कोई दम नहीं है, वो अपने माँ के एक ही पैदा होते हैं। क्यों? कि उनके गर्भ में बच्चे के ऊपर ऐसा कवर नहीं होता है, जाल लिपटा हुआ नहीं होता है, और वो इतना उग्र पुरुषार्थी होता है कि वो बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है। तो वो कहते हैं कि वो बाहर निकलता है कोशिश करके और दौड़ के 100-200 गज एकदम दौड़ जाता है, एकदम तेजी से। इतना मतलब वो स्फूर्ति वाला होता है। तो उसकी वजह से उसके माँ की योनि इतनी छद-बिच्छद हो जाती है कि फिर द्वारा वो गर्भ धारण करने लायक रहती ही नहीं। इसलिए अपन कहते हैं कि उसका शेरनी बस एक बच्चे को जन्मती है, उसका द्वारा जन्म भी दूसरे का नहीं होता। उसका कारण तो वैज्ञानिक तरीके से ये है। लेकिन अभी तक उस गाय के बछड़े की समस्या है कि उसके सारे शरीर में बहुत गंदगी और वो जाला लिपटा है। तो वो उसकी जो माँ है उस जाले को निकालना चाहती है, लेकिन उसके हाथ पैर तो काम करते नहीं है, तो वो अपने मुख से जबान से उसे चाट चाट कर वो सारी गंदगी साफ करती है, जाले को निकालती है। बोलो कितनी गंदी चीज है वो, और कोई आदमी अपनी जबान से उसको साफ करेगा? उसे देखना पसंद नहीं करते हैं। फिर भी माँ के पास कोई इलाज नहीं है और बेटे की वो गंदगी साफ होना बहुत जरूरी है, तो माँ अपनी जबान से उसे साफ करती है। तो उसको समझ में आ जाता है इस बच्चे को कि इन सब गायों में ये ही मेरी माँ है, अन्यथा ये ऐसा नहीं करती। दूसरों से मेरी सुरक्षा कर रही है, मेरे को चाट रही है, मेरी गंदगी साफ कर रही है। तो इतना जान लेता एक भेद विज्ञान, पहले नंबर का भेद विज्ञान हो गया असंवर अधिकार का। कौन सा? कि ये 9-10 गायें मेरी माँ नहीं है, पर एक गाय मेरी माँ है। यहां से बात शुरू हुई। अब इस माँ के ही ऐसा कोई अंग है जहां पर ये दूध का इंतजाम है, वो टांगों के बीच में कहीं है। अब टांगे भाग्य से 2 से 4 हैं, तो कभी कभी वो उस खोज में आगे की टांगों के बीच में अपना मुंह मारने की कोशिश करता है। गाय के मुंह में मुंह नहीं मारता, और जगह नहीं मारता, टांगों के बीच में। मैंने इतना उसे पता है, बस समझ लो कहां से है, कैसा है जन्मजात स्वभाव से ही, कि ये 2 टांगे हैं उनके बीच में मेरे दूध का मेरे खाने का इंतजाम है। अब जब वो अपने माँ के आगे के पैरों के बीच में कोशिश करता है तो माँ तो समझ जाती है कि जो यहां दूध की खोज कर रहा है, लेकिन उसके पास भी अब कोई ऐसे हाथ पैर नहीं है कि उठा करके वो वहां से हटा के पीछे उसे कह दे, ऐसी भाषा भी नहीं है कि उसे समझा दे वो। और जो उस गाय का मालिक है उसके भी चित्त में ये भाव आता है कि अब इसको मैं सहयोग करूं, तो वो बछड़े को वहां से हटाकर पीछे टांग की टांगों के बीच में जहां स्तन है वहां उसका मुंह करने की कोशिश करता है। तो वो गाय भी उसका विरोध करती है और बछड़ा भी विरोध करता है, दोनों उसे स्वीकार नहीं करते, आपका सहयोग हमें नहीं चाहिए। अरे क्यों भाई, सहयोग तो कर रहा है ना, वो उसे शत्रु तो नहीं मानता है ना, गाय कम से कम गाय तो नहीं मानती है, खुद गाय का तो मालिक है, वो तो उसका व्यवहार भी जानती है सब। लेकिन वो तो तुम्हारे सहयोग की मुझे जरूरत नहीं है ना, हमें आत्मा में जाना है तो गुरु जी के सहयोग की एक सीमा तक ही जरूरत है, उसके बाद जरूरत नहीं है। گائے سینگوں سے اسے مارنے کو دوڑتی ہے، نہیں تو کچھ نہیں، پچھڑا بھی ودروہ کرتا ہے، کیونکہ گائے بھی جانتی ہے کہ یہ بچڑا تھوڑا یہاں وہاں وہ مارے گا لیکن تھوڑی دیر میں اپنے آپ صحیح جگہ پہ پہنچ جائے گا اور یہ ماں آپ کا دودھ پی لے گا، پہنچ جاتا ہے جیسے صحیح پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر میں ایک شردھا گن ہے، اسے جس ماں میں اپنا پن اس نے استھاپت کیا ہے، ایسے ہی اس آتما میں انادی کال سے ایک شردھا نام کا گن ہے اور اس میں اپنا پن نکلنے کی طاقت ہے، تو جو جاننے میں آتا ہے اسی میں سے تو سلیکٹ کرے گا نا، وہ تو اپنا شریر ہی جاننے میں آتا ہے اتنت نزدیک، اس لیے وہ اس میں اپنا پن استھاپت کر لیتا ہے، ایسا 70 یا 78 پیج پر موکش بھاو پرکاشک میں لکھا ہے، نیچے کی 5 پنکتیاں ہیں پیج کی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کس میں لکھا نا، اپنا اپن شدھاتم میں، اپنے میں ہی لین ہونا ہی سمبر کا، جان بوجھ کر کے یہ شبد پریوگ کیے گئے ہیں، کیونکہ ان شبدوں سے بھی آپ پرچت ہوں، وہ شاستری تتوا شدھانم سمیہ درشنم اور یہ آتم بنشتی، اب وہ سارے شبدوں سے آپ پرچت ہیں، لیکن یہ ان شبدوں سے بھی آپ پرچت ہوں، اس لیے منگلا چرن میں سمبر کا سروپ بتاتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے۔ دیکھو سمبر کے لیے بھید وگیان بہت ضروری ہے، بھید وگیان مانے اپنے اور پرائے کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے سمبر ادھیکار میں پورا یہ سمبر ادھیکار بھید وگیان کے ابھینندن کو سمرپت ہے، یہ ابھینندن سماروہ ہے، کیونکہ بھید وگیان تو پہلے ہی ادھیائے سے کراتے آ رہے ہیں، ساری دنیا کو دو بھاگوں میں بانٹا ہے، ایک تو بھی 29 پرکار کے بھاو ہیں جنہیں ہم برنادی اور راگادی کہتے ہیں، اور ایک طرف اپنا آتما ہے، تو بھید وگیان تو پہلے میں کیا ایکتمت سمبندی جیوا جیوا ادھیکار میں، پھر کرتا کرم سمبندی بھید وگیان کرا کرتا کرم ادھیکار میں، پھر پن پاپ کے بھاو بھی دونوں ایک سے ہی ہیں، اور وہ آتما کے بھاو نہیں راگادی میں آتے ہیں تو ان سے بھید وگیان کرایا، آسرو ادھیکار میں پھر آسرو بھاووں سے بھید وگیان کرایا، تو آ گیا نا برنادی اور راگادی سب آ گئے، اب تو اس بھید وگیان کا ابھینندن کر رہے ہیں، مانے بھید وگیان کی پرشنسا کے گیت گا رہے ہیں، پورا آپ دیکھیں گے ابھی جو آپ نے کلش پدیانواد پڑھا، خاص کر وہاں سے کہ جہاں سے وہ رولا چھند شروع ہوئے ہیں، دیکھو رولا چھند شروع ہوئے نا، 4-5 چھند ہیں، پورے بھید وگیان بھید وگیان سمبندھی ہی ہے، پیج نمبر 394 پہ بھید گیان کے اس دھارا ابرل دھارا پربھائے سے، ہے نا، یہاں سے اب یہ چند ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6 یہ بالکل بھید وگیان کی مہیما کے ہی چند ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بھید وگیان کا ابھینندن ہے، اور اس میں خود بھی لکھا ہے امرت چند نے، ایک کرمک وکاس ہے ان میں، آپ روزانہ پڑھیں گے تو آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے اور یہ کرمک وکاس پر بھی آپ کا دھیان جائے گا، اس لیے میں سب سے پہلے دن آپ کو ان پہ دھیان دلا رہا ہوں۔ وید گیان کے اس ابرل دھارا پرواہ سے کیسے بھی کر پراپت کرے جو شدھاتم کو، شدھاتم کی پراپتی کا اپائے ایک وید وگیان ہے، اب کیسے بھی کرو تم، کیسے بھی کرو کا مطلب نہیں ہے کہ کئی اپائے ہیں، اپائے تو ایک ہی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کیا کریں ہم سے تو ہوتا ہی نہیں، کیا کریں ہم سے تو ہوتا ہی نہیں، تو وہ کہتا بھیا کیسے بھی کرو یہ ہوتا نہیں ہوتا نہیں والی بات نہیں کرے گی، یدی اپنا کلیان کرنا ہے تو کرنا ہی پڑے گا، یہ ارتھ ہے اس میں، کیسے بھی کر پراپت کریں اس شدھاتم کو اور نرنتر ہی اس میں پھر ہوا جاوے، وہ بھی بھید وگیان نہیں ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہلے سمے کیا نا، یہ جدا ہے اور یہ جدا ہے، हो गया भेद विज्ञान नहीं। फिर जो जिसको निज जाना उसमें निरंतर स्थिर होता जाना, इसका नाम भी भेद विज्ञान है। बनारसी दास ने तो ऐसा लिखा है, इसी प्रकरण में होगा, भेद ज्ञान कबिलो भलो कि भेद ज्ञान तबिलो भलो कि जबिलो मुक्ति न हो। क्या है? जब तो मोक्ष नहीं हो जाए, सीधे तो मोक्ष में नहीं पहुंच जाओ तब तक भेद विज्ञान भला ही है। इसका मतलब तब तक करते रहो। अब मुक्ति ना हो में इतना बहुत, मान लो केवल ज्ञान ना हो, समझिए ना, ये बात है। तो पर और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे, पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। इनकी विस्तार से व्याख्या तो जब ठंड आएंगे तब पढ़ेंगे अपन, अभी तो संक्षेप में आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कह रहा हूं। वेद ज्ञान की शक्ति से नित महिमा रथ को, जो अपनी महिमा में लीन है, ऐसे लोगों को भेद विज्ञान की शक्ति से शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि निश्चित रूप से हो जाती है। कितना सरल अर्थ है, बोलो। और शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि पर होने पर उसके अति शीघ्र कर्मों का क्षय हो जाता है। ये मूल कलशों में है, वही का वही बात देखिए। आत्म तत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संवर होता, और इसीलिए तो सच्चे दिल से नित्यवित करना है भरे भव्यजन भव्य भावना, भेद ज्ञान ख्याल में आइए ना, करना चाहिए। अरे भव्यजन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के अब तक भाना, कब तक? कि जब तक पर से हो विभक्त है ज्ञान, ज्ञान में ही थिर ना हो जाए, ये है वो, जब तक मोक्ष न हो जाए फिर ज्ञान कब न हो, ज्ञान ज्ञान में ही अनंत काल तक के लिए स्थिर न हो जाए। जब तक लौट लौट के ज्ञान बाहर आ जाता है ना, तब तक नहीं, जो केवल हो गया अंतर्मुहूर्त तक करना तो केवल ज्ञान हो जाएगा, तो अनंत काल तक फिर उसी में रह जाएगा, है ना। अब तक जो भी हुए सिद्ध और आगे होंगे सो सब महिमा भेद ज्ञान की, इससे ज्यादा महिमा तो कुछ नहीं हो सकती है। भेद विज्ञान था सिद्धा सिद्धा ये किल केतना, असही भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केतना। भेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, और शुद्ध तत्व की उपलब्धि से रागनाश हो, रागनाश से कर्मनाश, और कर्मनाश से ज्ञान ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जाए अनंत काल तक, उसी उसी में वो स्थिर है, तो है ना पूरा। इसके पढ़ने में आनंद आना चाहिए, कभी कभी खिल जानी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब ये पढ़ोगे आप 10-5 दिन जब तक ये चलेगा, 20 तारीख तक कम से कम, तो 20 तारीख तक मैं सबको एक पंक्ति, ये 5-6 छंद हैं, ये बहुत मार्मिक हैं, ये याद हो जाने चाहिए। चलो एक दिन भैया ऐसे गाओ तो वहां से मुझे आनंद आता है, इसलिए गवाता हूं। अच्छे गले का कंठ हो जिसको, आप लोग अपनी अपनी किताब में ध्यान से इसे देना, बहुत आनंद आएगा मेरे से बोलने से भी ज्यादा।
भेद ज्ञान की इस विरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर सकते शुद्धात्म को, और निरंतर उसमें ही दिल होता जावे, पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। वेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमा रत को, शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे। शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर उसके अतिशीघ्र आत्म तत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संवर होता, इसीलिए तो सच्चे दिल से नित प्रति करना, अरे भव्यजन भव्य भावना भेद ज्ञान की, अरे भव्यजन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के जब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में ही तिर न जाए अधिक कहे जिनेश्वर, अब तक जो भी हुए सिद्धिया आगे होंगे। महिमा जानो एकमात्र सब वेद ज्ञान की, और जीव जो भटक रहे हैं भव सागर में, वेद ज्ञान की ही अभाव से भटक रहे हैं। वेद ज्ञान के शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो, राग नाश से कर्म नाश, और कर्म नाश से ज्ञान, ज्ञान में फिर हो कर शाश्वत हो जावे।
अच्छा लगा ना, कुछ समय खराब नहीं हुआ ऐसा लगा, अनुभव हुआ ना। देखो अब मैं कुछ पंक्तियों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इसीलिए तो सच्चे दिल से नित्य प्रति करना, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की। अब ये अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान अनुप्रास भी है, अलंकार खोज सकते हो तुम लोग, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसी पंक्ति को फिर दोहराया है, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, वो सच्चे मन से बिन विराम के तब तक माना। वही की वही बात कहती क्या है? ये तो उस काव्य का दोष है। क्यों बात हो गई ना आगे बढ़ा, लेकिन किन्हीं प्रसंगों में वो दोष गुण हो जाता है। जब वो बहुत मार्मिक बात होती है तो उसमें वंश मोह हो जाता है। समझ गया ना? इसलिए यहां पर बहुत मार्मिक प्रसंग होने की वजह से वो बात दोष नहीं है, गुण है। एक ऐसा छंद आता है कुंडलिया में, जब लौट के आते हैं ना, जब पहले दोहा और फिर रोला होता है तो कुंडलिया बन जाती है ना, कैसे पीड़े दुष्ट एक बांधे मारे बहु विधि करें ये क्षमा बेबे, और फिर आता क्रोध न कीजिए, ऐसा आता ना रिपीट करके उसी बात को फिर रिपीट करते हैं। इस छंद में नहीं होगा, और छंदों में मिलेगा, जब खासकर कुंडलिया में होता है ना, तो ये एक पद्धति है कि वो बहुत मार्मिक प्रसंग होता है। यहाँ कितना अच्छा लगता है, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना। माने अभी हो गया, हम तो हो गया भेद ज्ञान, हो गया भेद ज्ञान, अब क्या करें, अब क्या करें, क्या भेद विज्ञान दिया तुझे, इस तरह को भेद विज्ञान हो गया है तो अब क्या करने का प्रश्न खड़ा होता है। तो कहे तब तक कर इस भेद विज्ञान को, इस भावना को भा, कि जब तक तुझे केवल ज्ञान ना हो जाए। बोल अब उसके तो बीच में तुझे और काम चाहिए, कैसा भेद विज्ञान हुआ है तुझे, कि अब उधर को तेरे को मौन ही किया जाता है, ऐसा नहीं है, हरेक को होता है। जब मैंने शास्त्री नान्यातीत कर लिया था 16 वर्ष की उम्र में, फिर मैं जाकर के एक जगह मिडिल स्कूल में हेडमास्टर हो गया था, इधर पारोली में राजस्थान में धरी, तो वहां पढ़ने की बहुत ज्यादा आदत थी, तो वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, उसमें 150 किताबें थी, तो हम लोग उस लाइब्रेरी में ही सोते थे। एक वहां बाबा जी थे, उनके साथ में सोता था, तो मैंने वो एक पहली किताब से लेकर अंतिम किताब तक 2-3 महीना में सब खत्म कर ली, पूरी किताबें पढ़ डाली। अब वहां कोई छोटा सा गांव था तो वो वहां कोई साथ मिलता नहीं था, तो मैं भीलवाड़ा गया, तो भीलवाड़ा में जो अजमेरा फैमिली है उसमें कस्तूर चंद जी अजमेरा थे, बहुत बुजुर्ग थे, दूसरी प्रतिमाधारी थे, और वो निरंतर स्वामी के पास बहुत शास्त्रों का भंडार था, राजवार्तिक वगैरह सब थे, भंडार था शास्त्रों का। तो मैं उनके पास गया, मैं कहा अभी मैं तो नहीं रहूंगा पारोली में, कि क्यों क्यों, मैं कुछ समय नहीं करता है, 4 घंटे 5 घंटे पढ़ा दो तो दिन भर क्या करें, तो आप पढ़ा करें, पढ़ने को तो मैं लाइब्रेरी मैंने पूरी कर दी, अब क्या पढ़े। तो बोले ये सब शास्त्र रखे ना, मुझे बिल्कुल एक एक शब्द बता रहा हूं, मुझे वो दृश्य दिख रहा है अभी, मेरे जो शास्त्र वहां रखे थे ना कैसे उनके कमरे में, दादा आपने भी देखे होंगे जो नीचे कमरे में रहते थे ना, वैसे सब शास्त्र रखे थे। बोले ले जाओ जो भी आपको चाहिए हो उठा के ले जाओ, ये पढ़ने वाला कौन मिलता है, बोले कोई खोलने वाला ही नहीं है, आप ले जाओ। तो मैंने क्या कहा था आप सुन करके आपको बहुत आश्चर्य होगा। तब मैं कोई 17 वर्ष का रहा हूंगा, जब जब पश्चाताप लिखा था तब की बात है। शादी नहीं हुई थी मेरी, बड़े दादा की हो गई थी। तो मैंने उनसे कहा कि ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते दिमाग सड़ गया, अब मुझे नहीं पढ़ना। मैंने बहुत तगड़ा अध्ययन किया था सब चीजों का, तो मुझे बहुत गुमान भी बहुत था। अब उनमें मन भी नहीं लगता था, तो मुझे पढ़ते पढ़ते दिमाग चढ़ गया है, अब मुझे ये नहीं ले जाना है आपसे। तो कहते तेरे को जिनवाणी पढ़ते पढ़ते दिमाग सड़ गया है तो क्या निहाल करेगा तू? ऐसा तो क्या कहते हैं कि वेद विज्ञान एक चीज यदि तेरे को उपलब्ध हो जाए तो देखो क्या पढ़ रहे हैं। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में, शिथिर ना हो जाए अधिक क्या कहें जिनेश्वर। अरे कैसी बात करता है तू, फिल्मी का स्वाध्याय करते करते दिमाग सड़ता है कि निहाल हो जाता है। बोलिए, ये बात सोचने की है। कल मैं महासमिति में गया था, महासमिति का वो था कि जो लोग महासमिति के जन्म के समय से उससे जुड़े हैं उन लोगों के सम्मान करने का कार्यक्रम था। और सारे देश में वो गांव गांव में जाकर के वो सम्मान करने का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वो आए थे केंद्र के लोग, मुझे भी बुलाया था। मुझको नाम माम तो लिस्ट में नहीं था, फिर बाद में सबसे ऊपर बैठाया, फिर मेरे को बोलने को भी समझ दिया, अब आप बोलो आप बोलो। तो मैंने कहा कि जहां ये इतने नेता बैठे हैं इन सब नेताओं के बापों के साथ मैंने काम किया है, पर मेरा संबंध महासमिति के जन्म से लेके नहीं है, उसके भी पहले जब वो गर्भ में आई थी तब से मेरा इसका संबंध है। क्यों तारातंद जी थे वहां, सुंदर श्रोताओं में बैठे थे, मैंने देखा। फिर मैंने उस वक्त की कई चीजें उनको सुनाई, बहुत बहुत लोग खुश हुए। वो अच्छी अच्छी बातें तो बहुत सुनाई, लेकिन एक मैंने बुरी बात भी सुनाई। मैंने कहा मैंने बहुत गहराई से इसे जुड़ा रहकर काम किया है, और एक बार जब मेरे अभिन्न मित्र जिनका मेरे साथ सबसे ज्यादा गहरा संबंध थे वो जब अध्यक्ष बने महासमिति के, तो उनने मेरी अनुपस्थिति में मेरे विरुद्ध महासमिति में प्रस्ताव पास कर दिया आज राज्य अधिवेशन में। ये क्या कह रहे, नाम भी बताया था मैंने। फिर क्या हुआ, बना कर दिया तो कर दिया। जब मैं आया, मैं तो विदेश में था उन दिनों, मैंने आया तो मैंने एक नई महासमिति बना ली और उसका नाम रखा दिगंबर जैन मुमुक्षु महासमिति। क्या फिर भाई समझौता वार्ताएं चली, तो समझौता हो गया तो फिर इकट्ठे हो गए। तो मैं ये बातें तुम्हारे रिकॉर्ड में नहीं होंगी, ये बातें तो तुम्हें सुनने को भी नहीं मिलेंगी, मैं चला जाऊंगा तो मैं रिकॉर्ड में होंगी, लेकिन ये बातें समझने सुनने का मौका भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। तो भाई तुम लोगों को भी बचपन से ये तत्व ज्ञान मिल गया है मेरे कहने का, और ऐसी श्रद्धा भी मिल गई है, समझ लो। हम तो उस समय उस ग्रुप में के लोगों के पास पड़े थे जो कांजी स्वामी का कट्टर विरोध करते थे, रोजाना क्लास में मजाक उड़ाया करते थे हमारे गुरु जी कांजी स्वामी की, क्या मैंने तो बात आन की इसकी उसकी उसकी है? लेकिन ये इस उम्र में ये तत्व ज्ञान का प्राप्त हो जाना और उसके प्रति आस्था पैदा हो जाना हृदय में कि सचमुच ये बिल्कुल परम सत्य है और इसके बिना कोई रास्ता आत्मकल्याण का नहीं है, एकमात्र यही रास्ता है। इससे बड़ी उपलब्धि कोई दुनिया में दूसरी नहीं हो सकती। और काम तो उन्होंने बता दिया, कब तक का बता दिया है? अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में। जिन्हें भगवान से ज्यादा क्या कहेंगे, बोलो। और जिन्हें भगवान, अभी घबराओ नहीं, इन्हीं तो जब छंद आएगा तब भी मैं आपको इससे भी ज्यादा समय में लेकर के और इस पर मैं बोलूंगा। अभी तो बीच में आ गई बात, अभी तो अपन शुरू में ही चले जहां अपनी बात चल रही है। क्या कि अपनापन शुद्धात्म में अपने में ही लीन, होना ही संवर का जिनवर परम प्रवीण। यद्यपि ये नीचे जो बातें लिखी हैं मैं आपको सुना चुका हूं, फिर भी पढ़ लेते हैं। इस ग्रंथाजिराज समय सार में सर्वप्रथम जीवाधिकार में दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा को वर्णादि व रागादि से भिन्न बताकर उनमें एकत्र ममत्व छुड़ाया गया है। उसके बाद कर्ताकर्म अधिकार में उन्हीं वर्णादि व रागादि भावों के कर्तृत्व और भोक्तृत्व से इंकार किया गया है। उसके बाद पुण्य पापाधिकार में पाप के समान ही पुण्य भाव को भी बंध का कारण बताकर हे बताया है, भगवान आत्मा से भिन्न बताया गया है। उसके बाद आश्रवाधिकार में भी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पाप और पुण्य दोनों ही भाव आश्रव हैं, बंध के कारण हैं, इस कारण हे हैं यह बताया गया है। ये पूरा यहां तक का समय सार आ गया। अब आगे, अब इस संवराधिकार में उन सभी भावों से भेद विज्ञान कराया जा रहा है, यद्यपि विगत अधिकारों में भी उक्त भावों से भेद विज्ञान कराया गया था, क्योंकि संपूर्ण समय सार ही भेद विज्ञान के लिए समर्पित है। तथापि इस संवर अधिकार में विशेष भेद विज्ञान की विशेष महिमा बताई गई है। इस अधिकार की प्रारंभिक गाथाओं की जो उत्थानिका आत्मख्याति टीका में दी गई है, उसमें कहा गया है कि अब इससे पहले संपूर्ण कर्मों का संवर करने का उत्कृष्ट उपाय जो भेद विज्ञान है उसका अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन करते हैं, है ना, अभिनंदन समारोह। एक प्रकार से यह अधिकार भेद विज्ञान के अभिनंदन का ही अधिकार है। इसलिए कहता हूं इसमें स्वरूप कम बताया गया है, इसमें उसकी महिमा ज्यादा गाई गई है ना? क्योंकि भेद विज्ञान की बात तो पहली गाथा से ही शुरू कर दी ना उन्होंने। समय सार नाटक के रंगमंच पर अब संवर नामक पात्र प्रवेश करता है। लिखा अत प्रवेशति संवर, संस्कृत में लिखा ना। आत्मख्याति टीका में अन्य अधिकारों के समान ही इस अधिकार का प्रारंभ भी मंगलाचरण के रूप में ज्ञान ज्योति के स्मरण पूर्वक होता है। मंगलाचरण के छंद का छंद इस प्रकार है, बोलो पढ़ें। आशंसा देखो, आपने सैकड़ों शास्त्र पढ़े होंगे और उन शास्त्रों के मंगलाचरण भी पढ़े होंगे। एक शास्त्र ऐसा है जिसमें मंगलाचरण नहीं किया है, वो आप पढ़ते हैं। बात आपने शुरू कर दी है, प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषाद विपर्या इति लक्ष्यम तयोर्वक्षम सिद्धम अपन लगी। बहुत प्रश्नोत्तर किए गए, बिना मंगलाचरण के कैसा शास्त्र बना रहे? उन्होंने कहा क्या मंगलाचरण, हमारा तो प्रत्येक वाक्य मंगलाचरण नहीं है, पूरा शास्त्र ही मंगलाचरण है। हम तो जो बोल रहे वो मंगल ही मंगल है, कहीं ऐसे नहीं मानते हम। इसमें तो लिखा है प्रमाण से पदार्थ की सिद्धि होती है और प्रमाणाभास से सिद्धि नहीं होती है। ऐसा जानकर हम इन दो प्रमाण और प्रमाणाभास की चर्चा करेंगे जो अल्प बुद्धि वाले हैं ऐसे लोगों के लिए। इतना सा अर्थ है उसका। तो इसमें क्या मंगलाचरण है? तो हमारे दिग्गज आचार्य थे भाषा विज्ञान के, उन्होंने कहा हो गया ना, तुम्हें वैसे ही चाहिए ना कि नमस्कार करे तो मंगलाचरण कराए। अरे मंगल वाक्य नहीं है, मंगल ही है। फिर प्रा माने प्रकृष्ट रूप से, मां माने केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी, के रा माने धारक, निकाल के उनने प्रत्यय से बता दिया कि इसका ऐसा अर्थ भी निकलता है। तो एक तो वो चीज ऐसी है जहां मंगलाचरण नहीं किया गया है, तो मूर्ख शास्त्र भी ऐसा ही है, मंगलाचरण की जगह थोड़ी है, ये तो बाद में किसी दूसरे ने जोड़ा है, लेकिन जोड़ा उसी वक्त है, क्योंकि इसे समुद्र भजन ने तो इस पर तो सारा लिखा है। वो तो कितने पुराने हैं, 1900 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं समुद्र भद्र भी। अब इसमें देखिए अमृतचंद्र की विशेषता, आत्मछाती टीका के हर मंगलाचरण अलग है, समय सार के मंगलाचरण, समय सार में हर अधिकार में मंगलाचरण नहीं है, लेकिन आत्मछाती टीका में उन्होंने हर मंगलाचरण किया। लेकिन आदिनाथ से लेकर महावीर तक किसी को भी नमस्कार नहीं किया। गौतम स्वामी से लेकर अपने गुरु पर्यंत किसी को भी नमस्कार नहीं किया, ऐसा मंगलाचरण। जबकि उनके जिसकी टीका वे लिख रहे हैं वे खुद ही लिखते हैं प्रत्यय प्रत्यय हम सबको सामूहिक और प्रत्येक को अलग अलग और विदेश क्षेत्र के और फलानी जगह के और यहां हैं मान से खेतते जितने मनुष्य क्षेत्र में विद्वान है उन सबको, लेकिन वो नहीं करते किसी को याद, नमस्कार नहीं याद ही नहीं करते। सिर्फ एक को याद करते हैं, किसको? पहली गाथा सबसे पहले छंद में तो त्रिकाली ध्रुव को उन्होंने याद कर लिया, तो आगे तो उसकी भी छत्ती कर दी। बस उस ज्ञान ज्योति को, उस भेद विज्ञान ज्योति को, उस प्रज्ञा श्रेणी को क्या वे याद करते हैं, मतलब उसको ही नमस्कार करते हैं। एक तो ये विशेषता है कि शुरू से अंत तक एक उस ज्ञान ज्योति को उन्हें नमस्कार किया, ज्ञान की ज्योति जलानी थी उन्हें। और दूसरी ये बात है कि जिस अधिकार का प्रकरण आया वो उस अधिकार के मर्म को जानने वाली ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया। ये संवर अधिकार में भी वही बात है, देखो असंसार विरोधी संवर जयी कांता वलिप्ता सर्वा, ये रावण की चर्चा है। क्या मतलब समझे? पद्म पुराण पढ़ोगे 700 पेज के आदि पद्म पुराण होगा तो 400 पेज शुरू में रावण के होंगे, फिर बाद में राम की आएगा, जन्म भी बाद में होगा राम का। अरे भाई रावण तो इतने पहले का राजा था कि उनके बाप दशरथ तो जनक, राम और सीता के वे उनके साधारण जो 16,000 मुकुटबद्ध राजा थे उनमें एक थे, उन 16,000 में एक नंबर आता था उनका। क्या वे रावण के राज्य में ही उनके से इतने अंदर के छोटे से कर्मचारी थे, समझ लो आप। और किसी ने रावण को बता दिया था कि राम और सीता के निमित्त से तुम्हारी मौत होगी, तो छुपे छुपे फिरते थे दोनों, गद्दी पे नहीं बैठ सकते थे। क्या नवानु कमरवा डाले के सामने लड़ते ना समझ क्या हैसियत थी उनकी ने? ये तब की बात है जब राम और सीता का जन्म भी नहीं हुआ था। समझे आप? देखो ये क्या रावण की बात, असंसार विरोधी अनादिकाल से जो संवर का विरोधी था, माने झगड़ा आदिकाल से नहीं, आज का नहीं है, आश्रव और संवर का झगड़ा, आश्रव संवर दो अधिकार है ना,
तो आश्रम अधिकार का तो अपन ने पढ़ ही लिया था मंगलाचरण, और उसमें अपन ने बनारसी दास का पढ़ा था, तो बील रस का कैसा परिपाक हुआ था याद है कुछ, एक आध पंक्ति रण खम्ब तोड़ी ताड़ो ऐसा है ना, था ना कुछ याद है, आश्रम पछाड़ो रण खम्ब तोड़ी डालो, निकल जाएगा इसमें, निकल जाए पुरानी इसमें हो गया। आज सबका महान जोड़ा पादनी जी बहुत रस लेके पढ़ते थे उस मंगलाचरण को, मिल गया है शांति जी पढ़ो। तो आश्रम में भी यही उसी ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया था जिसने आश्रम को पछाड़ा था, अब वो आश्रम भाव फिर खड़ा हो गया यहां, कहते कैसा है, आसंसार विरोधी संवर जयी, अनादि काल से अपना जो विरोधी संवर है उसको इस पर जीत प्राप्त की है, माने उसे जीत के फिर अपने बिल्कुल होने ही नहीं दिया, जमीन में से खड़ा ही नहीं निकलने ही नहीं दिया, समझ गया ना, आ संसार विरोधी संवर जयी, दादा समझे ना, आ संसार माने अनादिकाल से, जब से संसार है तब से विरोधी किसका, संवर का, और उस पर जयी और उसके उसने जीत पाई, तो एकांत अलभता सुबह ये उससे एकदम इतना अभिमान हो गया, उस अभिमान से अवलिप्त में पूरी तरह शराबोर, ऐसा जो आश्रम भाव है उसको नकारा, उसको नकार दिया है जिसने, और प्रतिलब्ध नित्य विजयम, और उस पर जीत हासिल की है, कैसी जीत हासिल की है कि जो जीत कभी हार में नहीं बदलेगी, पृथ्वीराज जैसी नहीं है, मोहम्मद गौरी जैसी नहीं है, समझ गए आप, क्या कहते हैं, नित्य विजय प्राप्त की है, और संवाद यत संवरम, जिसने संवर को संपादित किया है, पैदा किया है, स्थिर किया है, समझे ना, अब ये कौन है, ना तो संवर है ना आश्रव है, ये कोई तीसरा ही है, जिसने ये काम किया है कि अनादिकाल से संवर को जीत लेने के कारण जो अभिमान में चूर चूर हो रहा था उसको नकारा करके नित्य विजय जिसने प्राप्त की है, संवादयत संवरम, ऐसा संवर आगे कितना सीधा सीधा अर्थ है, जो ये संवर जयी मदमत्त आश्रव भाव का अपलाप कर व्यावर्त हो पर रूप से सदरोध संवर भास्कर, समझे ये अनुवाद है इसका, अब आप देखो बिल्कुल बिल्कुल हूबहू है ना, कोई चक्कर नहीं ज्यादा उसमें, ये जो भाव है अंदर में घूमना चाहिए तो फिर वो अपने आप छंद बन जाता है, तो पूरा भाव अंदर में व्यावृतम पर रूप तो नियमतम, तो इसने क्या काम किया था ज्ञान ज्योति ने, कि पर रूप से नियमित रूप से व्यावृत कर दिया, पर झगड़े में फंसना ही नहीं, पर गई पर से हट गया, और सम्यक स्वरूप ए स्फुरन, जो आत्मा का सम्यक स्वरूप है, सच्चा स्वरूप है, उसमें वो ज्ञान ज्योति स्फुरायमान हो रही है, जग रही है, जल रही है ना, अब स्फुरन ज्योति, वो ज्योति कैसी चिन्मय चैतन्यमय उज्जवल जो आत्मा है, निज रस प्राग भार, अपने रस के भार से वो निरंतर जल रही है, वो ज्ञान की ज्योति निरंतर, ऐसी ज्ञान की ज्योति को नमस्कार करता हूं, बस याद किया खत्म, अपन क्या समझते नमा के बिना तो मंगलाचरण हो गई नहीं, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम हर जगह हाथ ही जोड़ते फिरें, हमने उसके स्वरूप को स्पष्ट किया यानी याद किया, बस यही मंगलाचरण हो गया, वह ज्योति बस ऐसी ज्योति, अब उस ज्योति को मैं नमस्कार करता हूं, हर जगह कहने की जरूरत नहीं है, ऐसे सैकड़ों मंगलाचरण मिल जाएंगे, ऐसे भी मिल जाएंगे तज्जयति परम ज्योति, क्या है ये नमस्कार तो नहीं किया, क्या अर्थ है इसका? वो परम ज्योति जयवंत रहे, बस खत्म। इसको क्या बोलते हैं? आशीर्वादमक मंगलाचरण, आशीर्वाद दे दिया। तो अपने से छोटी है वो, अरे छोटों को ही नहीं बड़ों को भी आशीर्वाद दिया जाता है, बता ना नहीं। आशीर्वाद का मतलब थोड़ी उसकी सब कामना अपन के दर से वो प्रकट किया, वह परम ज्योति से जयवंत रहे, जयवंत जय हो जय हो जय हो। असल में वो बात आ गई ना, देखो संबर जयी मध्य मत आश्रव भाव का अपलाप कर, ख्याल तो आ गया ना। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बात तो ज्ञान ज्योति की चल रही थी ना, इसमें क्या लिखा है? प्रगटा, तो प्रगति लिखना चाहिए था ना। सोचो जरा पीछे से कहो तो सुधार दें, बोलो क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा? अरे भाई, इस ज्ञान ज्योति को पुलिंग बना दिया है पिछली लेन में। अब मैं देख रहा था कोई पेज पलटता है तो उसी समझ में आएगा, अब पलटा पेज। सद्बोध संवर भास्कर है ना, व्यावृत हो पर रूप से सद्बोध, उसे भास्कर बना दिया ना, सूर्य बना दिया, तो सूर्य तो उदित होगा, उदित थोड़ी होगी। अरे आपकी समझ में कुछ नहीं आया, आप समझ गए ना, अब पढ़ो अब समझ में आएगा। देखो संबर जयी मद मत आसप, ऐसे कौन वो संबर भास्कर, वो ज्ञान ज्योति, वो सूर्य निद्रस के भार से ही, मैंने आनंद 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 के उसके भार से इतना है कि नम गया है, झुक गया है, ऐसा ज्ञान सूरज को, ज्ञान रूपी ज्योति को मैं नमस्कार करता हूं। बाकी की बात करता हूं,